ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी 2 दिन की कनाडा यात्रा पर सवेरे कैलगरी पहुंचे। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मिलेंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित अन्य नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।
यह प्रधानमंत्री मोदी का पिछले एक दशक में पहला कनाडा दौरा है। 2015 में उनकी पिछली यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। भारत कनाडा संबंधों को मजबूत जनसंपर्क, बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों, भारतीय छात्रों की मजबूत उपस्थिति तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की प्रचुर संभावनाओं द्वारा बल मिलता है। विश्व भर में भारतीय प्रवासियों के लिए कनाडा सबसे प्रसिद्ध बसेरों में से एक रहा और इसकी आबादी का लगभग 4.5% है। इसमें मूल के लगभग 1.8 मिलियन कैनेडाई और 1 मिलियन अनिवासी भारतीय शामिल है। सुपर्णा साइकिया के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री मोदी कल क्रोएशिया की राजधानी जागरेब पहुंचेंगे। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया यात्रा होगी। G7 देशों के नेताओं ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। G7 के नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है, वहीं ईरान को क्षेत्र में अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत बताया है। G7 देशों ने क्षेत्रीय तनावों के बीच नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वाशिंगटन लौट आए हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संघर्ष के मद्देनजर ट्रंप ने यह फैसला किया है। ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा कारणों से भारतीय विद्यार्थियों को शहर से बाहर भेज दिया है। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में बताया गया है कि जिन नागरिकों के पास आने जाने की अपनी व्यवस्था है, उन्हें भी स्थिति को देखते हुए शहर से बाहर जाने को कहा गया है। कुछ भारतीयों को आर्मेनिया से लगने वाली सीमा से ईरान से बाहर निकलने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में है। ईरान और इसराइल आज लगातार 5वें दिन भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दोनों देशों में फ्लैश पॉइंट क्षेत्रों में नागरिकों को हमलों का सामना करना पड़ रहा है। तल अवीव और यरूशलम में विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। इसराइल की सेना ने कहा कि ईरान ने मिसाइलों से नए हमले किए हैं। ईरान ने इसराइली हमलों के जवाब में 2 बार मिसाइलों से हमले किए। आज सवेरे मध्य और उत्तरी इसराइल के कुछ हिस्सों में हवाई हमले की चेतावनी दी गई। ईरानी मीडिया ने बताया कि इसराइली धरती पर सबसे बड़े और सबसे तीव्र मिसाइल हमले की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर इसराइल की सेना ने कहा है कि उसने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर कई बड़े हमले किए। इसराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने रात भर के हमले में ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के करीबी सहयोगी अली शादमानी को मार गिराया है। ईरान में संघर्ष शुरू होने के बाद से कम 224 लोग मारे गए हैं, जबकि इसराइल में 24 लोगों की मौत हुई है। इसराइल की सेना ने कल रात ईरान के 30 ड्रोन को रोकने और नष्ट करने का दावा किया। इसराइली रक्षा बलों ने बताया कि ईरान ने इसराइल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना पर सरकार की स्थिति के बारे में लोगों को भ्रमित कर रही है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का विचार क्या है? हम कहते हैं सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसीलिए हमारी सरकार जिस विषय को लेकर सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना कराना चाह रही है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों को सम्मान और सबसे पिछले छोर पर खड़ी हुई जातियों का उत्थान।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने बताया कि 45 एकड़ में फैले इस कार्गो टर्मिनल में 4.5 लाख वाहन रखने की क्षमता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।